मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। afis.com के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का आज 24 अक्टूबर को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो टाइम जोन पर, यानी टू टाइम जोन। आपको शायद ध्यान हो कि बहुत पहले, मेरी समझ से शायद 6 महीने पहले की बात ये हो गई होगी, अपने वीकली क्वेश्चन में मैंने एक प्रश्न दिया था कि भारत में दो टाइम जोन की मांग की जा रही है, इसके पक्ष में विपक्ष में आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न कुछ इसी तरह का था जिसका संबंध दो टाइम जोन से था। तो आइए फ्रेंड्स, आज इसी पर हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम कहते हैं टाइम जोन, तो ये टाइम जोन क्या होता है? इनफैक्ट एक बहुत ही आसान सी ये बात है, मतलब एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया, चाहे एक देश हो या एक पर्टिकुलर एरिया हो, और उस एरिया में अगर एक ही टाइम स्टैंडर्ड टाइम का पालन किया जा रहा है, यानी कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र की एक ही घड़ी है, कह लीजिए सरल शब्दों में, इसका मतलब यह हुआ कि वह एक टाइम जोन में है। जैसे हमारा देश है भारत, भारत का जो टाइम जोन निर्धारित, जो समय निर्धारित किया गया है, वो 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर किया गया है, 82.5 डिग्री देशांतर, और इसको आधार बना करके पूरे देश की घड़ियों को एक कर दिया गया है। यानी कि अब आप इसे इस रूप में समझिए कि मान लीजिए कि आप मुंबई में हैं, राइट, और मुंबई में सूर्योदय 7 बजे हुआ है, सूर्योदय, राइट। तो जब आप बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पता लगा कि सूर्योदय तो हो चुका है 5:30 बजे, 1.5 घंटा पहले ही हो चुका है, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी घड़ी में बज रहे हैं 7, उनकी घड़ी में उतने ही बज रहे हैं जितने मुंबई की घड़ी में बज रहे हैं। इसे हम कहेंगे कि पूरे भारत का जो टाइम जोन है वो एक टाइम जोन है, यानी कि उसका सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक देशांतर रेखा के आधार पर समय फिक्स कर दिया है और उसी को पूरे देश पर लागू कर दिया है। इसे हम कहते हैं सिंगल टाइम जोन, राइट। अब आइए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा हम इसके मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, मैं मैथमेटिक्स ही कहना चाहूंगा। देखिए, जो भारत है, भारत के आप नक्शे को देखिए तो आप इधर अरुणाचल प्रदेश को देखिए और इसके बाद फिर आप सीधे सीधे जाकर के आप एकदम वेस्ट में चले जाइए, एकदम वेस्ट में चले जाइए। अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है वो है किबीथू, और जो पश्चिमी हिस्सा गुजरात का एक गुजरात की एक जगह है गगरिया, उसको देखिए। इन दोनों के बीच में लगभग लगभग अंदाजन में, समझाने के लिहाज से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, 30 डिग्री देशांतर का फर्क है, 30 डिग्री देशांतर, राइट। अब ये देशांतर क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इतनी ज्योग्राफी तो आपने बिल्कुल पढ़ी रखी होगी, मैं मान करके चलता हूं कि आप देखिए कि अगर आप नक्शे को देखेंगे तो वे लाइनें जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है, धनुष के आकार की लाइनें होती हैं, जैसे धनुष थोड़ा सा तिरछे टाइप का होता है, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, राइट, जो टोटल 360 है। अगर बीच में हम एक रेखा खींच दें जो इंग्लैंड के पास से खींची गई है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच के पास से गुजरी हुई है, इसीलिए उसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, तो इसको पूरी दुनिया ने अपना स्टैंडर्ड मान लिया है, क्योंकि देखिए अब हवाई जहाज जा रहे हैं तो वो तो आपके सूर्योदय और देशांतर को नहीं देखेगी ना, वो तो अपना एक जगह से निकल करके दूसरी जगह पर जा रही है तो वहां कितने बजे पहुंचेगी, यहां से कितने बजे उड़ेगी, अभी कहां है, तो आपको एक इंटरनेशनल टाइम की भी जरूरत होती है, इंटरनेशनल टाइम आपको फिक्स करना पड़ता है ना। तो यह फैसला किया गया कि 0 डिग्री ठीक है, उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, और इसके बाद फिर अपने अपने देश के लोगों ने अपने अपने ढंग से अपना अपना समय फिक्स किया कि वो अपने किस डिग्री देशांतर को टाइम जोन मानते हैं। भारत ने 82.5 डिग्री को मान लिया। अब आप देखिए कि ये 360 डिग्री, राइट, एक डिग्री चार मिनट के बराबर होता है। मतलब जब हम एक पर्टिकुलर देशांतर से दूसरे देशांतर में मूव करते हैं, अगर एक देशांतर मूव करते हैं तो टाइम में चार डिग्री का फर्क पड़ जाता है। अब आप कैलकुलेट करके देखिए कि टोटल 360 देशांतर हैं, उसको चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 1440 मिनट मिल जाएंगे, यानी कि 24 घंटे हो गए, राइट। तो इस तरह से एक दिन 24 घंटे का हुआ और इसमें पृथ्वी एक चक्कर अपना लगा लेती अपने कक्ष में। इसका मतलब है एक डिग्री चार मिनट के बराबर। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश और जो इधर गुजरात का जो वेस्ट का पार्ट है हमारा, ईस्ट और ये वेस्ट, इन दोनों में देखिए जो देशांतर जो टाइम का फर्क पड़ेगा, याद रखिए वो नॉर्थ और साउथ में नहीं पड़ेगा, वो ईस्ट और वेस्ट में पड़ेगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं टाइम को निर्धारित करती है ना, देशांतर रेखाएं। तो इसीलिए हम ईस्ट टू वेस्ट को ले रहे हैं। अगर 30 डिग्री का फर्क है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का फर्क है, तो 30 डिग्री में आप 4 मिनट का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का फर्क। इसका मतलब यह हुआ, आप समझिए कि अगर गुजरात के इस जगह पर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यही सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो जाएगा, 5 बजे हो जाएगा। अरुणाचल नाम ही है अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सूर्य, वहां 5 बजे हो गया है। अब आप देखिए कि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरी समझ से यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है, इसमें जरा भी कहीं कोई बहुत यूं कह लीजिए कि जटिलता नहीं है, बहुत ही सामान्य सी बात है। अगर आपने ट्रेवल किया हो तो आपको इसका अनुभव भी होगा। आप उतनी दूर क्यों जाते हैं, चलिए नॉर्थ ईस्ट आप मत जाइए, आप थोड़ी सी दूरी पर देख लीजिए ना। मान लीजिए कि आप साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं या मिडिल भारत में आ गए हैं, तो क्या आप सूर्योदय का टाइम बिल्कुल एक ही होता है? ये तो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि वहां 2 घंटे का फर्क है सूरज निकलने में, अदरवाइज सभी जगह सूरज एक ही समय पर नहीं निकलता है, सूरज अपने समय से निकलता है, हमारी घड़ी में अलग अलग टाइम उस समय शो होते रहते हैं। अगर हम सूरज को लेंगे घड़ियों में तो सब जगह, अगर मेरी घड़ी में 5 बजे हैं तो जम्मू कश्मीर की घड़ी में भी 5 बजे हैं, चेन्नई की घड़ी में भी 5 बजे हैं, असम की घड़ी में भी 5 बजे हैं और जयपुर की घड़ी में भी 5 बजे हैं, घड़ियों में सब जगह 5 बजे हुए हैं, लेकिन सूरज सभी जगह एक समान उदित नहीं हुआ है, न तो उदित हुआ है और न ही सूर्यास्त हुआ है, राइट। और उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, 2 घंटे का फर्क है, क्योंकि भारत का देशांतर फैलाव लगभग लगभग 30 डिग्री का है। तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो 2 टाइम जोन की जो मांग की जा रही है, मांगने वाला कौन है? नॉर्थ ईस्ट के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 2 टाइम जोन बना दिया जाए, हमारे लिए एक अलग टाइम जोन बना दिया जाए और बाकी को फिर आप एक अलग टाइम जोन में रखिए। देखिए, अगर हम ईस्ट के लिए एक टाइम जोन अलग बना देते हैं, जैसे आप असम से ले लीजिए या उसमें आप वेस्ट बंगाल को भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा चाहे तो, या पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट और उस हिस्से को ले लीजिए ना, अदरवाइज आप वेस्ट बंगाल और जो ईस्ट में और पार्ट आते हैं बिहार उड़ीसा आपको ले लीजिए, इनके लिए आप अलग से बना दीजिए, तो इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? देखिए, जो हम दिन का निर्धारण करते हैं सही मायने में, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दिन और रात कहते हैं, उसका मापदंड हमारी घड़ी नहीं है, उसका मापदंड है सूरज का निकलना और डूबना। आप खुद बताइए कि गर्मी के दिनों में आपका जो सूरज है पता लगता है कि वो 5:30 बजे निकल जाता है, और ठंड के दिनों में यही सूरज 7 बजे निकलता है, 7:15 बजे निकलता है, गर्मी में यही सूरज 7:15 बजे तक चमकता रहता है शाम को, और ठंड के दिनों में यही सूरज 5:30 बजे दुबक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर अलग अलग समय में सूरज अलग अलग निकल रहा है, डूब रहा है, और इसी को तो हम कह देते हैं कि रात हो गई और दिन निकल गया सूरज से। तो अब आप देखिए कि व्यावहारिक परेशानी इसमें जो है फ्रेंड्स, दो है जो डिमांड की जा रही है, उस रीजन को समझ लीजिए, दो इसके मुख्य कारण है। पहला कारण तो यह है कि सूरज निकल गया, जैसे मान लीजिए चलिए हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो 5 बजे सूरज निकल गया तो अब वो तो 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि वहां सूरज 5 बजे निकलता ही नहीं है, बल्कि 5 बजे डूब भी जाता है शाम को, जल्दी सूर्यास्त भी हो जाता है। तो अब वो तो जब सूर्यास्त हो गया तो फिर अब उसी हिसाब से देखिए, सूर्य तो हमारी ऊर्जा को, हमारी दिनचर्या को काफी कुछ कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है ना। अब उनके लिए तो दिन खत्म हो गया, तो खेत बाड़ी के काम बंद कर देंगे, दुकान से भी उसी तरह से काम खत्म होने लगेगा, ऑफिसेज में भी उसी तरह से होने लगेगा, और सोचेंगे कि अब घर चलो, अंधेरा हो गया है, घर चले जाएंगे। पता लगा कि 7-8-9 बजे तक खा पी करके वो सो गए, अब सो गए हैं तो सुबह जल्दी उठेंगे, 5 बजे उठ जाएंगे क्योंकि सूरज निकल गया है। अब होता यह कि दूसरे काम में तो आप लग जाएंगे, लेकिन सरकारी काम का आप क्या करेंगे? पता लगेगा कि दिल्ली में भी सरकारी दफ्तर 10 बजे खुल रहे हैं, आपके अहमदाबाद में भी 10 बजे खुल रहे हैं, और आपके बंबई में भी 10 बजे खुल रहे हैं, और पता लगा कि इम्फाल में भी 10 बजे खुल रहे हैं। अब ये उठ चुके हैं 5 बजे, अब 10 बजे तक ऑफिस के खोलने का इंतजार किया जा रहा है, राइट? केवल यही इंतजार नहीं कर रहे हैं कि जिनको ऑफिस खोलना है वो भी इंतजार कर रहे हैं, जिनको ऑफिस से काम है, जिनको ऑफिस में जाना है, राइट? अब वो दिल्ली का आदमी अगर 7 बजे उठा है तो तैयार होकर के 10 बजे ऑफिस पहुंच गया तो बात ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का आदमी 5 बजे उठ चुका है, अब वो ऑफिस का इंतजार कर रहा है, पहली बात, यानी कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। दूसरी चीज आप देखिए कि जो सूर्य है कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा से सीधे जुड़ा हुआ है। सूर्योदय के टाइम पर हम अपनी ऊर्जा के क्लाइमेक्स पे होते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो पता लगा कि जब ऊर्जा के हम अपने क्लाइमेक्स पर हैं, चरम पर हैं, तब तो हम काम नहीं कर रहे हैं, और 5 बजे जब सूरज डूब चुका है, और लेकिन ऑफिस से 7 बजे तक का, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस से 6:30-7 बजे तक के कुछ होते हैं, अब वो 7 बजे तक ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं, यानी कि जब ऊर्जा ढल चुकी है तब भी वहां काम किया जा रहा है। ये दूसरा रीजन हो गया, मतलब हम अपनी ऊर्जा के चरम पर काम करने की स्थिति में नहीं होते, यहां हम मिस करते हैं। तीसरा उन्होंने ये भी एक रीजन मतलब कहा जाता है फ्रेंड्स, वो ये कि अब आप जब सूरज निकला हुआ है तब काम नहीं कर रहे हैं, जब सूरज ढल गया है तब आप काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बिजली की खपत बढ़ेगी? अब आप बिजली की खपत बेकार के बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब प्रकृति की रोशनी थी तब तो आपने काम किया नहीं, और अब जब प्रकृति की रोशनी नहीं है तब आप काम नहीं कर रहे हैं, तब आप काम कर रहे हैं, सॉरी। इसका मतलब यह हुआ कि केवल टाइम जोन ठीक न होने की वजह से हमारा प्रकृति के साथ तालमेल गड़बड़ा गया है, हम उसके निर्देश के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, इन पॉइंट्स को लेकर वो लगातार इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि 2 टाइम जोन होने चाहिए। मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, एक 2012 की ही बात है, हमारे जो मंत्री थे रहे, केंद्रीय मंत्री रहे शशि थरूर जी, उनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, और उस ब्लॉग में उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो यंग लोग हैं, जो लड़के हैं, चूंकि सूर्य के उजाले में वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्रिकेट की, इसीलिए वहां क्रिकेटर्स की संख्या कम है, वहां क्रिकेटर्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी में प्रैक्टिस करने के लिए कम समय मिलता है, यह उन्होंने रीजन दिया था। और सच पूछे तो उसके बाद से फिर उन्होंने एक और भी उनके मैंने लेख पढ़े जो उन्होंने इस बात को लेकर के लिखा, और फिर थोड़ी सी बात उठी कि क्या 2 टाइम जोन एक्सेप्ट करे, क्या भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए। मित्रों, इससे पहले भी यह बात उठी है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं उठी, 2006 में खुद योजना आयोग ने यह कहा कि देश में अगर अलग अलग टाइम जोन किए जाएं तो उससे लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, 2006 में, सोचिए योजना आयोग ने यह बात कही। और बाद में एक बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में है, इन्होंने एक स्टडी करके ये बताया था कि अगर हमने टाइम जोन बना दिए, 2 टाइम जोन एटलीस्ट बना दिए, तो हम सालाना हर साल 2,00,000 करोड़ वाट आवर्स बिजली बचा सकेंगे, 2,00,000 करोड़ वाट आवर्स बिजली बचा सकेंगे, क्योंकि फिर वो लोग रोशनी में काम करेंगे, प्राकृतिक रोशनी में काम करेंगे। तो ये तो एक पक्ष है मित्रों जो इसकी मांग कर रहे हैं, और इसी पक्ष में आप ये बात भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल भारत में ये बात कही जा रही, कि अमेरिका, अमेरिका में तो चार टाइम जोन है, चार टाइम जोन, क्योंकि हम अमेरिका तो मेरा हम लोगों का पूरा घूमा हुआ है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं आप तो आपको घड़ी मिलानी पड़ेगी। अगर आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया चले गए तो आपको घड़ी में काफी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आप नक्शे में देखिए कि अमेरिका का जो पूर्व से पश्चिम तक का फैलाव है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा फैलाव है। तो उन्होंने टाइम, चार टाइम जोन बांध रखे हैं। अब अमेरिका से ही अमेरिका में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्लाइट आ रही है, ट्रेन जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो शुरू में थोड़ी सी यूं कह लीजिए कि दिक्कत होती है। हालांकि इसके विपक्ष में जो लोग कहते हैं कि किस तरह की दिक्कतें होंगी, तो उनका यही कहना है कि जो भारत चूंकि बहुत ही सघन आबादी वाला देश है तो उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों के जो टाइमिंग्स के जो तालमेल होंगे, तालमेल बैठाने में बहुत दिक्कत होगी। रेलवे है, एयरलाइंस है, और राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापार हैं जैसे शेयर मार्केट वगैरह हैं, तो इनका मैनेजमेंट कैसे होगा? तो इसका तो देखिए बहुत ही सिंपल सा उत्तर है कि अगर अमेरिका चार टाइम जोन को मैनेज कर सकता है, अमेरिका जैसा देश, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत उसे बड़े आराम से कर सकता है। और वैसे एक बात और भी है फ्रेंड्स, उसे आप मेंशन कर सकते हैं कि इससे पहले अंग्रेजों के समय में भारत में बकायदे ब्रिटिश काल में तीन टाइम जोन रह चुके हैं, तीन टाइम जोन रहे हैं। एक तो बॉम्बे का टाइम जोन था, आप देखिए कि वेस्ट में है। इसके बाद कलकत्ते का टाइम जोन था जो ईस्ट में है। इसके बाद एक और टाइम जोन था जो बागान टाइम जोन था, जो असम वगैरह के जो चाय बागान थे ना उनके लिए एक टाइम जोन अलग रखा गया था ताकि सूर्य के निकलते ही वो अपना काम शुरू कर दें। सोचिए तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली अपने चीजों को अप्लाई किया और वो सफल रहे, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? भारत भी ऐसा कर सकता है। तो मित्रों ये टाइम जोन, दो टाइम जोन को लेकर के मैंने कुछ आपसे बेसिक चर्चा की है। मेरी समझ से डेफिनेटली अब आपके दिमाग में थोड़ी सी स्पष्टता आई होगी, और मैं चाहूंगा कि आप जो वीकली क्वेश्चन दिया गया था इसको लेकर के एक बार अब उसे फिर से हल करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, देखिए कि अब आप उस प्रश्न को कितने अच्छे से लिख सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।